الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحترم عزیز بہنوں اور بھائیو، الحمد للہ تعالی ہم نئی سورت سورت رعد شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ 13ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور ابھی آپ نے اس کی پہلی 7 آیات یا ایک رکوع جو پہلا رکوع ہے اس کی تلاوت سماعت فرمائی. سورہ رعد کا نام جو ہے، ہم اس کے اسی سے شروع کرتے ہیں، سورت کے نام سے جو ہے ہم نام کا تعارف اور اس کا وجہ تسمیہ بھی عام طور پہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. رات کے معنی ہوتے ہیں بادل کے، اور اس سے پہلے میں پہلے بھی بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ سورتوں کے نام کا جو جو فارمیٹ ہے، سورہ رات، سورت الرات، یا سورت الرات، یا جو مختلف قسم کے لوگ جو ہے پرونسیشن سنتے رہتے ہیں، اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اس کی جو صحیح ترکیب ہے وہ سورت الرات، یہ جو ہے سورت الرات، یہ اس کی صحیح ہے جو پرونسیشن ہے. سورت کے اوپر جو ہے آخری جو لفظ پارٹ اس کے جو اوپر جو ہے یہ پیش ہوتی ہے، پھر اس کو اگلے لفظ سے ملایا جاتا ہے. اور اگر اگلے لفظ جو ہے رات رے جو ہے حروف اگر شمسی ہو تو پھر جو ہے اگر جو یعنی پہلا لفظ شمسی میں سے ہو جو رے ہے یا را ہے تو پھر الف لام کو نہیں پڑھا جاتا، اور اگر قمری حروف ہو تو پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو لفظ کو، اس وجہ سے آپ دیکھیں. اور پھر آخری جو لفظ ہے سورت کا اس کے نیچے بھی جو سورت الرعد، یہ جو ہے اس کے صحیح پورا صحیح فارمیٹ ہے. اور یہ جو ہم سورت الرعد، سورت کے مختلف کہتے ہیں اردو میں، اور مختلف سورت رات کہتے ہیں، سورت الرعد کہتے ہیں، کچھ آپ کہہ سکتے ہیں. اردو کی پروننسیشن تھوڑی سی مختلف جو ہے، یہ ترکیب مختلف ہو سکتی ہے. عربی کی جو پرانی جو ہے اس کا پورا نام ہے سورت الرعد. رات کے معنی بادل کی گرج جو ہے، جو تھنڈر ہوتا ہے، جو آواز آتی ہے جو بادلوں کی، بادلوں سے جو ہے وہ ان کی جو بھی فرکشن، جو ان کے جو بھی ایک سائنٹیفک فینامینا ہے چینج آتا ہے، ان کا جو چارج ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے جو ڈفرینٹ چارجز جب قریب آتے ہیں تو جو بھی آواز پیدا ہوتی ہے وہ بادل کی گرج تھنڈر ہے. اس کا ذکر ہوا ہے اس قرآن مجید کی صورت کے اندر. تو اس ایک لفظ کے حوالے ریفرنس سے سورت کا ایک علامتی نام جو ہے رکھا گیا ہے، 13 نمبر آیات یہ لفظ آیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بادلوں کی گرج کے متعلق کوئی بات کی گئی ہے، مطلب کوئی بحث کی گئی ہے یا اس کو موضوع بحث بنایا گیا. باقی سورتوں کی طرح قرآن مجید کی یہ بھی ایک جو ہے سمبولک نام ہے، سمبل کے طور پہ. سورت کا حجم ریلیٹیولی ایک چھوٹی سورت، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی تینوں صورتیں 110, 112, 11, 12 جو ہے آیات کی تھیں، طویل صورتیں تھیں، 11 رکوع 12 رکوع پہ مشتمل تھیں، یہ جو ہے 6 رکوع پر مشتمل ہے اور 43 آیات ہے. آیات نسبتاً چھوٹی تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک جو ہے چھوٹی صورت ہے، بڑی صورتوں کے درمیان میں یہ ایک چھوٹی صورت. زمانۂ نزول اس کا، اس کے بارے میں آپ جب تفاسیر میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں نے اس کو مکی لکھا ہے، کچھ لوگوں نے مدنی لکھا، اور کئی پرانے مصحف میں اس کو مدنی پر لکھا ہوا ہے، تو کچھ اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن باقی مکی کی صورتوں کی طرح اس صورت کے بیشتر مضامین وہی ہے مکی صورتوں کے، یعنی توحید ہے، رسالت اور جو ہے آخرت کا مضمون ہے. تو اس حوالے سے تو ایک اس کے مضامین کی شہادت تو بالکل یہ واضح ہے کہ یہ مکی صورت ہے. پھر اس کے رکوع 4 میں اور پھر 6 میں تو بالکل مضمون اسی طرح لگتا ہے جس طرح سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں اور سورہ اعراف جو ہے نازل ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اسی زمانے کے اندر یہ جو رکوع بھی جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کا چوتھا دور جو ہے یا آخری دور جو ہے وہ یہ اس کا ہے. اور سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، یہ مرکزی مضمون بھی ہمیشہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھا کیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو، جب آپ کو کسی کو بتانا ہو، آگے بات کرنی ہو کہیں بھی تو جو ہے آپ کے ذہن میں ہو. تو سورت کے مرکزی مضمون یہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں یہی حق ہے، مگر لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ اس کو مان کر نہیں دے. ابھی تو اس بات کو مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ثابت کیا گیا. यानी इसके अंदर तौहीद भी है, मौत भी है, रसालत भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही जाहिर है, यही दावत थी जो है, तीन जो ईमानियात सलासा है जिनको कहा जाता है, इन्हीं की दावत थी। और इसी की वजह से कि सबसे बड़ी शहादत भी यही है, इन तीन ईमानियात सलासा का जिक्र है सूरत के अंदर, जो मक्की मदनी सूरतों में नहीं है बल्कि मक्की सूरतों का खासा है। तो ये मक्की होने की इसकी दलील है। और फिर जो है इनके ऊपर ईमान लाने के जो अखलाकी और रूहानी फवायद है वो जो है वो समझाए गए हैं, और फिर उसको ना मानने के, ईमान ना लाने के जो है नुकसान बताए गए हैं। लेकिन ये तो जो है वो एक मंतकी इस्तदलाल है, लेकिन सिर्फ मंतकी इस्तदलाल से काम नहीं लिया गया, बल्कि एक एक दलील और एक एक शहादत को पेश करने के बाद फिर जो है लोगों से खिताब किया गया है, उनको खौफ दिलाकर, उनको जो है डर के जरिए से, उनको तरगीब और तशवीक से और मुश्किलाना तलकीन भी की गई। यानी ये सारे जो जो आप कह सकते हैं कि बात को समझाने के, बात को जो है इफ़हाम तफ़हीम के, बात को समझाने की जितनी मुमकिन तौर पे जो है वो सलूब हो सकते, वो सारे के सारे जो यहाँ पे बयान की गई सूरत के अंदर जो है, जिसको अल्फाज आप देख लेंगे, तख़वीफ डर तख़वीफ जो है खौफ, तरहीब जो है डर, तरगीब किसी को शौक दिलाना, और तलकीन जो है कि नसीहत करना। तो ये सारे के सारे जो है ये भी किए गए, इसलिए कि हो सकता है कि मंतकी इस्तदलाल से सारे लोग फायदा ना उठा सकें, मंतकी इस्तदलाल को प्रोसेस ना कर सकते हूँ और उनसे नतीजे ना निकाल सकते हूँ सब लोग, तो फिर दूसरे तरीके से भी बात जो है ठीक है। ये सारे सालीम में जो है बात सूरत के मजामीन में तीन मजामीन बड़े तकसीम आप कह लें बड़ी है। कुरान पाक की जो दावत है तौहीद व आखरत, ये हक है, ये पहले 18 आयत में पेश किया गया है, और इसमें फिर जो अल्लाह ताला का रुबूबियत का वसी निज़ाम है, जो कायनात के अंदर जो अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है उससे फिर जो है इस पे वो लाया गया है, शहादत लाई गई है। और फिर जो मुनकरीन क़यामत के तअज्जुब करते हैं कि जो है ये अगर हम मर गए तो फिर हम दोबारा कैसे उठाए जाएंगे, इसके जवाब दिया गया है। और ये निशानी का मुतालबा करते हैं कि अजाब को ले आओ आप, उसका जवाब भी दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को पुकारना एक बिल्कुल धोखा, एक शराब है, इस शराब के पीछे इंसान भाग रहा है, और जहां वहां जब वहां पे पहुंचता है शराब की जगह पे, तो वहां पे जो है वो देखता है कि कुछ भी नहीं, कोई पानी नहीं है, और अल्लाह ताला की कायनाती निशानियों का जो जिक्र है। दूसरा मजमून जो इसका है वो 19 से 29 आयत तक 11 आयत है, और उसमें जो अहल तौहीद और अहल शिर्क का जो है वो वो किया गया है, ये सॉरी ये मिस टाइपिंग टाइपो है, अहल तौहीद नहीं, अहल तौहीद अकल वाले हैं ये बात बताई गई, यानी कंपेयर करके, और अहल शिर्क जो है वो अकल से काम नहीं लेते हैं, बेवकूफ है, ये बात में बताई गई है। ईमान के फवायद बताए गए हैं, ईमान वालों के आमाल बताए गए हैं, और कुफर के नुकसान बताए गए, और कुफर के वालों के पुराना आमाल जो है बताए गए हैं, और बताया गया है कि बिल आखिर जो कामयाबी होगी वो अंजाम कार जो है वो ईमान वालों का ही अच्छा होगा। और इसकी जो मुखालफत कर रहे हैं जो लोग, और जो इसकी मजामत कर रहे हैं, उस पर तीसरा मजमून जो है वो अहले ईमान का बखैर अंजाम, उसके बारे में बात की गई है। आखिरी जो है वो आप कह लें 14 आयात के ऊपर, मुखालफत में, इंकार में, और सासों का जो माहौल था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी तौर पे जो है ताकीद की गई है कि आप अपनी दावत का काम जारी रखिए, और आपको तसली दी गई है कि ये आप जो इतराज कर रहे हैं कोई बात नहीं है, आपसे पहले भी जितने रसूल आए हैं वो सारे के सारे जो है आपकी तरह बशर भी थे, बशर ही थे, उनकी भी बीवियां और बच्चे थे, और जो है उनमें से कोई भी फरिश्ता या कोई और आसमानी मखलूक नहीं थी। तो इसके साथ साथ शिर्क की और शुरका की और शुफा की नफी की गई है कि इनमें से कोई भी जो है ये जो जिनके इन्होंने अब खुद साफ अकीदे घड़ रखे हैं, ये सारे के सारे जो है ये गलत है। अंजाम करीब आ रहा है ये बताया गया है, और बताया गया कि झुटलाने वालों को अनकरी मालूम हो जाएगा कि अंजाम कार की कामयाबी जो है किसके से आती है। उसके चीजें नुकात में जो है अफराद और अकवाम के जो जवाल का एक जाब्ता जो है सूरत में बयान किया गया है, और ये मजमू तौर पर अगर आयत नंबर 11 और 17 और 28 को देखें तो फिर जो है ये वहां पे बैन किया गया है। और हम में से जो भी मौजूदा हमारी कौम की पस्ती और जिल्लत है जो है उसके ऊपर जो है नोखा है, तो वो फिर इन आयात के ऊपर गौर कर सकते हैं। तो ये जो आयात इंशाल्लाह जब यहाँ पहुंचेंगे आप तो इनको फिर इसका जो है तस्करा करेंगे। इस्लाम अपने मानने वालों में जो जहनी रूहानी और अमली इंकलाब बर्पा करता है उसका जिक्र भी इसी सूरत के अंदर जो है वो किया गया है 19 और 24 दो आयात। इस्लाम से बेबैरा होते ही इंसान का दामन जो है फिक्रो अमल की आलूदगियों से मुलविस हो जाता है, वो उसका जो है वो यहाँ पे तस्करा किया गया है। और ये इन कंपैरिजन ताकि पता चल सके इस्लाम के जो इनकलाब अपनी जो असरात हैं वो किस कदर जो इंसान इंसानियत के लिए मुफीद है ये बताया गया है। इंसान अपनी आज बेपनाह मादी तरक्की और साइंसी तरक्की के बावजूद बेचैन और मुस्तरब है। इत्मीनाने कल्ब वो बड़ी एक नायाब जिंस जो है बन गई है और इसकी इंसान को शायद आज सबसे ज्यादा जरूरत इस दौर के अंदर है। तो कुरान मजीद ने इस सूरत के अंदर एक आयत के अंदर इंतहाई सादा दिल नशीन और बड़े रूपरवर अंदाज के अंदर इसको इस्मताए अजीज को जो है उसका जिक्र किया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब के जो है अल्लाह ताला के जिक्र से ही अल्लाह ताला के साथ लो लगाने से उसके साथ ताल्लुक पैदा करने से ही इंसान को जो है वो दिल का इत्मीनान हासिल होता है। मोमिनी यानी अहले हक और अहले तौहीद की 10 सिफात बयान की गई है। सूरत के मजामीन के ऐसी मिसालों के जरिए से इंसानी फहम के करीब लाया गया है जो जिंदगी से भरपूर और मुतहरिक है, यानी बिल्कुल रोजमर्रा की आंखों देखी आप उनमें से देखते गुजरते उठते बैठते ये चीजें देखते हैं। इंसान को गौर फिक्र की दावत दी गई है कि कायनात में मौजूद निशानियों में उसके लिए रहनुमाई का बहुत सामान मौजूद है। इंसानी अकल और उसकी कुव्वत इदराक के सामने कायनात की वसअतें पेश की गई हैं और उन पर गौर करके ताकि इंसान उन पर गौर करे और फिर हकीकत को पा सके यानी अपने रब को पहचान सके। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर हम जो है वो शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम रा ये हरूफ मुकत्तआत हैं, इनको इसी तरह अब्रिविएटेड या जो है सूरत के अंदर लिखा जाता है और इसके मानी पे जो है वो बहुत ज्यादा बात करना बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। इनके मानी जो है वो एक उसलूब भी था अरबों के जमाने के अंदर इस तरह की कुछ लिखा जाता था और इनके जो मानी अगर कोई खसूसी मानी है तो अल्लाह और उसके रसूल उसको जानते हैं। तिल का आयातुल किताब, तिल का ये अच्छा तिल का वैसे तो दूर का इशारा है दूर के लिए ना, तो दूर के लिए वो, लेकिन अगर ये तो जाहिर है कुरान मजीद उस वक्त नाजिल हो रहा है और बात की जा रही है, हाँ मतलब जब नाजिल हो रहा है नाजुबई को नजूल है तो वहां से वो वहीं पे है, तो जाहिर है अगर करीब की किसी चीज के लिए दूर का इशारा लाया जाए तो वो उसकी अहमियत को वाजे करता है। ये अरबी का एक उसूल है आमतौर पर बहुत सारी जगहों पे जो है अप्लाई होता है। मसलन अगर मारफा में किसी चीज को बिल्कुल नकरा कर दिया जाए तो उसकी बड़ी अहमियत फिर वाजे हो जाती है मारवा, ना कि मारफा की अपनी अहमियत है लेकिन अगर उससे भी ज्यादा अहमियत देनी हो तो उसको नकरा फिर कर दिया जाता है। इस तरह की मिसालें जो है मौजूद होती है। उसी तरह तिल का ये किताब की आयात है, आयातुल किताब किताब की आयात है, तो जैसे तिल का जो है वैसे वो मानी आनी चाहिए और तिल का जो है वो किताब की वजह से जो है वो तिल का इसके साथ आया है। वल्लजी वही है वो उनजिला जिसने उतारा इलाही का आपकी तरफ मेरे रब्बे का आपके रब की तरफ से अलहक हक होते हुए अपने रब की तरफ से हक जो है उतारा उसने। वलाकिन और ये हक का तर्जुमा मिस हो गया इंशाल्लाह ऐसा किया जाएगा। वलाकिन और लेकिन अक्सर अन्नास लोगों की अक्सरियत ला यूमिनून जो है ईमान नहीं लाती। तो ये इस आयत का जो है तर्जमा है अलिफ लाम मीम रा ये किताब इलाही की आयात है और जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया वो ऐन हक है मगर तुम्हारी कौम की यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गया तुम्हारी कौम के अक्सर लोग मांग कर नहीं दे रहे। अल्लाहुल्लज़ी अल्लाह वो है जो रफा जिसने उठाया बुलंद किया समावात आसमान को जिसने आसमान को बुलंद किया यानी आसमान को जो है वो दायरे बुलंद से मुराद दूरी है जमीन से और जो ऊपर है कैनोपी है तो बिल्कुल अदर देन यानी जमीन के अलावा जो कुछ भी मौजूद है फिजा के अंदर, फला के अंदर, वो सारे का सारा जो है समावात है, वो सारा जो है वो पूरी की पूरी कॉस्मोस, पूरी की पूरी यूनिवर्स जो है समावात है। बगैर अमादिन, बगैर अमादिन, बगैर कोई उर्दू वाला बगैर अमादिन जो है सुकून के लिए, आपको पता है हम इसकी जमा इमाद होती है, जैसे हम पढ़ा करते थे सलात तो इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है, तो ये जो है अमद भी उसी वही तरह तुम देखते हो उसको बगैर सुकूनों के, बगैर अमदिन, बगैर सुकूनों के, तरौनहा जैसा कि तुम देखते हो, या तरौनहा तुम देखते हो उसको, हा भी है उसको, यानी उसको भी इस मानो। और ये हा जो है देखें कि फेमिनिन की जो है ये जमीर है, फेमिनिन क्यों है, समावात फेमिनिन, आसमान उर्दू में मुजक्कर है, अरबी में मुअन्नस है, अमद जमा है इमाद की जो है वो इमाद की जिसमें मतलब होता है सुकून। तुम मस्तवा, फिर इस्तवा जो है का मतलब होता है मुतमक्किन होना, इस्तवा बैठना, ये सारे, फिर वो मुतमक्किन हुआ लल अर्श, अर्श के ऊपर मुतमक्किन हुआ। अब ये इसका जो जो वर्ब देख लें, बाबे इफ्तियाल है, इस्तवा, जिस्तवी, इस्तवान, कायम होना, करार पकड़ना, बैठना, जलवा अफरोज होना, तो ये सारे मानी है। लेकिन जाहिर है अल्लाह ताला की जात के बारे में अंदर ये मुतशाबिहात में से आयत है, यानी अल्लाह ताला की जात के बारे में वो कैसे बैठा, कैसे मुतमक्किन हुआ, कैसे जला अफरोज हुआ, तो ये वो चीजें हैं जो इंसानी समझ से हमें कोई जो फहम, जो हमारे जो सेंसेस दिए गए 5 सेंसेस, उनमें से कोई सेंसेस को बरूएकार लाते हुए हम जो है ये कंप्रीहेंड नहीं कर सकते, हम ये समझ नहीं सकते वो कैसे जैसा अफरोज हुआ। जाहिर है अल्लाह ताला की जात को जो है वो कंप्रीहेंड करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है, तो ये इसी वजह से ये आयत मुतशाबिहात में से, यानी हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि बस वो जो है उसने जब आसमानों को पैदा किया, जमीन को, तो फिर वो जो है वो मुतमक्किन हुआ अर्श पर, अर्श जो है उसकी कुर्सी और पूरा जो है वो है, ये भी अर्श क्या है, उसकी नौयत क्या है, माहियत क्या है, ये भी जो है उसमें से है मुतशाबिहात में से। वो सखरा, और उसने मुसखर किया शम्स वल कमरा, और शम्स को और सूरज को और चांद, मुसखर से मतलब है कि उनको जो है पाबंद बना दिया, तो जाहिर है वो पाबंद हैं, देख रहे हैं कि सूरज और चांद एक बिल्कुल जाब्ते के पाबंद हैं, जिससे वो किसी सूरत के अंदर कोई जो है डिविएट नहीं करती। हर रोज हर मतलब है मिलियन रादर बिलियन ऑफ ईयर से एक ही चीज को जो है ये है सखरा, सखर कलम इकबाल ने जो फरमाया था ना कि खुदी के पाबंद नबातात जमादात, ये भी जाहिर नबातात जमादात ही है उनमें से, तो जो है उनको खुदी के पाबंद अल्लाह ताला ने उनके लिए एक जाब्ता मुकर्रर कर दिया है, उसी की पाबंद मोमिन है फकत अहकाम इलाही का पाबंद, ये वो बात है। कुल्लु यजरी, तमाम के तमाम जारी है, यजरी जो है वो लफ्ज है उर्दू से, इससे जारी इसी से बना है, जरा यजरी जरियान, तो उर्दू में जारी जरियान, ये सारा जो है ये पोस्टपार्टम जो ब्लीडिंग होती है उसको, औरत की जिचकी के बाद की जो ब्लीडिंग होती है उसको जरियान कहते हैं, खून का जारी होना, ये भी जारी उसी से, उर्दू में देखें जारी लफ्ज, जा जारी जरियान, ये इसी से वो है, इसी से निकलेगा। ले अजलिन मुसम्मा, मुसम्मन है तो जाहिर है अगर स्टॉप करेंगे तो मुसम्मा पड़ेगी, ले अजलिन एक वक्त के लिए, और मुसम्मा, मुसम्मा ये तस्मिया जो होता है नाम, सम्मा मुसम्मी तस्मियतन जो है ये नाम रखना, जिसको नाम मुसम्मा मफूल है, तो ये जो है जिसको नाम दिया गया, यानी जिसको जिसका जिसका वक्त मुकरर कर दिया गया, जिसको बिल्कुल मुकरर, जिसको एक जो है मियाद मुकरर कर दी गई है, तो अजल के मैंने तो वक्त और मियाद है, टाइम है, और ये जाहिर हम कहते हैं कि उसके अजल आ गई, उसका वक्त आ गया, उसकी मौत आ गई है, अजल मौत के मामले में भी आता है, इसी वजह से आता है, यानी ये फिगुरेटिव मीनिंग है, असल मानी उसका जो है वक्त और मियाद होता है, किसी की अजल आ गई है, उसका वक्त आ गया, मियाद पूरी हो गई, और मुसम्मा जो है मुकर्रर नाम दिया गया, मुअय्यन, जो दब्बेर उल अम्र, वो तदबीर करता है उमूर की, कामों की, जिस जितने भी दुनिया के अमूर हैं कायनात के, वो दब्बरा जो दब्बे हो तदबीरन, ये तदबीरों, ये तदबीर, ये मैं बता दूं, ये जो मस्तर होता है इसको दो तरीके से लिखा जाता है, दो जबर के साथ भी लिखा जाता है, दो पेश के साथ भी लिखा जाता है। तो आपकी चॉइस है, डिक्शनरियों में कुछ डिक्शनरियों में दो जबर के साथ, कुछ में जो है दो पेश के साथ लिखा जाता है, तनवीन के साथ लिखा जाता है, ये नहीं। तो तदबीर करता है, तदबीर का लफ्ज जो है यहीं से निकला है, दब्बरा से। युफस्सिलुल आयात, फसला युफस्सिलु जो है तफसील खोल कर बयान करना, तफसील बयान करना, वो खोल कर बयान करता है आयात, आयात को लअल्लकुम शायद के तुम, वो खोल कर बयान करते हैं निशानियों को। इसका तर्जुमा लअल्लकुम का तर्जुमा जो है क्या मिस हो गया है, जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, शायद के तुम। फसला युफस्सिलु तफसीलन, देखो तफसील भी उसी उर्दू से निकले हुए लफ्ज, शायद के रब काजिर भी जो है साथ, लिका मुलाकात रब, रब से मुलाकात, तुम के नून तुम जो है उसको यकीन करो, शायद कि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन करो। जो है बोले शायद का जो नीचे आ गया तर्जुमा। तो ये जो लिका है ये वही लफ्ज है उर्दू उर्दू में जिससे मुलाकात है, इसी लिका से ही निकला हुआ है मुलाकात। वहुवल्लज़ी वही जात है, मद्दा लफ्ज जिसने जमीन को फैलाया, ये लफ्ज वही मद्दा है जो हम कुरान मजीद पढ़ते हुए जो सीखते हुए जिसे लफ्ज जिसे मद कहते हैं, वही है मद्द है। मद के ऊपर जिस लफ्ज के ऊपर मद हो उसको फैलाया जाता है, खींचा जाता है, तो ये वही मद्दा है। मीम दाल दा, इससे जो है वो फिर और भी लफ्ज जो है मुद्दत भी निकला हुआ है, टाइम स्पेन ऑफ द टाइम, मुद्दत जो है स्पेन जो है, फिर इससे जो है वो और भी लफ्ज जो है शायद दवात के बारे में भी कहा जाता है कि वो इसी से लिखा हुआ लफ्ज है दवात, क्योंकि वो जो है वो चलती ही रहती है, जाहिर है तो जो है प्रोवाइड करती ही रहती है लिखने के लिए, जिसे एक वो बीसी से लिखते हुए मद्द जमुद्दो, मद्दन फैलाना खींचना बिछाना सब मानी में, यानी उसने जमीन को फैलाया खींचा बिछाया सब मानी जो है इसके अंदर मुमकिन है, और एक ही मानी की तरफ पॉइंट कर। वजालफिया, और उसने बनाया उसने रवासिया व अनहारा, रवासिया को हम शायद गलबन सुरह जो है वो रहमान के अंदर पढ़ाए थे, जो है पहाड़ वहां से मुराद है कि किसी और जगह शायद पढ़ा था, वो अनहारा और नहरों को, और उसने बनाया उसमें यानी जमीन के अंदर, उसने जब जमीन को फैलाया तो फिर उसने उसने पहाड़ बनाए और नहरें, और जिन नहरों से मुराद है दरिया बनाया। तो रवासिया रासिया तुन की जमा है, पहाड़ से मुराद है, और अनहार नहरों की जमा है, उर्दू में इस्तेमाल होता है अनहार भी नहर भी जो इस्तेमाल। वो मिन कुल्ले समरात, और उसमें सारे फल रखे वहां फलों में से, यानी फलों को सुबह भी सी जालफिया, और बनाए उसमें ज़ौजैन, ज़ौजैन अच्छा ज़ौज जो है एक जोड़ा, तो ज़ौजैन दो जोड़े, और इत्नैन फिर उसमें फिर दो जोड़े उसमें आ गया ज़ौजैन, यानी ज़ौजैन ज़ौजैन असल में एक जोड़ा है, मतलब जो ज़ौज अगर आपको पता है जो अपोजिट सेक्सेस के जो स्पाउसेज हैं उन दोनों को मिलकर ये ज़ौजैन ये है, ठीक है, और फिर इत्नैन दो, फिर उसमें बनाए दो जोड़े, इन्हीं चीजों के मुख्तलिफ चीजों के आप देख रहे हैं कि कायनात के अंदर जो है हर चीज को जो है जोड़ों में अल्लाह ताला ने बनाया है। अच्छा ये जो जोड़ा होता है ये ज़ौजैन लफ्ज जो है तहनिया है ज़ौज का, एक अगर सिंगल स्पाउस हो जैसे हस्बैंड तो वो एक ज़ौज है, या वाइफ एक ज़ौज है, तो दोनों को अगर जो है ये दोनों अगर हो मर्द और औरत, अगर दोनों बीवी और खामिन दोनों इकट्ठे हों तो फिर उसको ज़ौजैन कहेंगे, जैसे मिसल कहेंगे हकूक ज़ौजैन, यानी ज़ौजैन के एक दूसरे पर जो हकूक है। अच्छा जोड़े में से हर एक जो है दूसरे का ज़ौज होता है, स्पाउस होता है, ये ज़हन में रख लें, यानी ज़ौज का लफ्ज सिर्फ मर्द के ऊपर अप्लाई नहीं होता या औरत के ऊपर अप्लाई नहीं होता। हाँ ये एक जैसे आप मतलब इसमें आप कह सकते हैं कि जौजा फिर क्यों कहा जाता है, अच्छा जौजा इसलिए कहा जाता है यानी ये बाद की बाद में जब देखें कि एक एक कानूनी हमारी जरूरत है, जब यानी अदालतों के अंदर मामला को फिकी जरूरत है हमारी, हमारी फिक में जब इस्लाम के अंदर जब जब मामला होंगे तो फिर जौज के बाद जौज में जो है फिर जाहिर तशरी करने में जौज से मुराद कौन मुराद है, तो फिर जौज और जौजा में तफरीक करके जो है हम वो लफ्ज लिखा जाता है, वरना तो जौज जो है अप्लीकेबल है मर्द के लिए भी औरत के लिए भी दोनों के लिए। उसने बनाए दो जोड़े जोगशी जो है ये जो लफ्ज है जोगशी ये आगशा जोगशी से है मतलब ढांपने के मारों में आता है, वो ढांपता है जोगशी वो ढांपता अल्लाह रात को अन्नहार दिन से दिन को यानी रात रात से जो है वो दिन को ढांपता है और वाइस वर्सा भी ट्रू है। कुरान मजीद में कई जगहों पे बिल्कुल कैटेगोरी के लिए एक दूसरे को ये ढांपने के लिए भी कहा गया है अक्षा योगशी अक्षान ढांपना, और उर्दू में इसे गशी जब इंसान का जहन जो इंसान की अकल है वो जब ढांपी जाती है उसको होश नहीं रहता गशी की हालत, तो वो जो है वो भी इसी से लफ्ज निकले हुए गशी की। इन नफी जाले का बेशक इसके अंदर ला आया जो किन्हीं तौर पे निशानी है बहुत सी निशानी किन्हीं नहीं लम जबर ला जो है आयत से पहले ये हरकत ताकीद है लिखो लिखो मी या तफक करूं लम्ज ली के लिए कौम लोग या कौम के माने भी इस्तेमाल करते हैं या तफक करूं जो गौर व फिक्र करते उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते ये जो या तफक करूं उर्दू में तफक्कर और फिक्र और ये फिक्र गौर व फिक्र इस्तेमाल होते हैं। कोई साथी इन आयात का तर्जमा
वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हों, फिर वो अपने तख्त सल्तनत पर जलवा फरोज हुआ और उसने आफ्ताब और महताब को एक कानून का पाबंद बनाया। इस सारे निजाम की हर चीज एक वक्त मुकर्रर तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही ये सारे काम की तदबीर फरमा रहा है और निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन करो। और वही है जिसने ये जमीन फैला रखी है, उसमें पहाड़ों के खोंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीजों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र से काम लेते हैं।
जज़ाकअल्लाह। ये सूरत का आगाज देख रहे हैं कि बड़ी अहम बात से किया गया है और ये इस्लामी नजरिया हयात का बुनियादी मसला उसके जो है सूरत के आगाज में इसका जो प्रोक्लेमेशन है इसका जो है बताया गया है इसका ऐलान किया गया है कि ये किताब अल्लाह की जानिब से नाजिल हुई है और ये जिन हकायक पर मुश्तमिल है वो बिल्कुल हक और सच्ची है। ये बात जो है इस्लामी नजरिया हयात की बुनियादों में से है असासियात में से है बेसिक में से है और बाकी तमाम नजरियात और अकायद जो है वो इसी नुक्ते पर जो है फिर आगे तामीर होते हैं। और ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि अकीदे तौहीद अकीदे बास बादल मौत इन बात दोबारा उठने का अकीदा जिंदगी में अमल साले की अफादियत और तमाम अखलाकी तालीमात इस बात पे उनका डिपेंड है कि ये सब अहकाम मिन जाने बिल्ला है, यानी ये बात ये सारी की सारी बातें अल्लाह ताला की जानिब से है और ये कुरान की शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से लेके आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जो है बता रहे हैं। ये है वो बुनियाद जिस पर पूरा दीन जो है तामीर हुआ है और इसी बात की प्रोक्लेमेशन आप देख रहे हैं कि तिल का आयातुल किताब ये है वो किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक वलाकिन अक्सर अन्नास ला यूमिनून, ये जो है बात बताई गई इंतजाम किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि बहुत अहम जो है ऐलान है प्रोक्लेमेशन है जो है वो बिल्कुल सूरत के आगाज के अंदर ही और कुरान मजीद को अल्लाह ताला के एहसान के तौर पर भी जिक्र किया गया है कि देखिए ये कुरान जो है ये किसी इंसानी फिक्र की बनावट नहीं है, किसी ने इसको घड़ा नहीं है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है और ये हक है। अल्लाह ताला ने वो अजीम नेमत जिसका उसने अपने नबियों और रसूलों के जरिए से वादा फरमाया था जो है उसने अब उतार दी है, वो आखिरी किताब अब आ गई है, अब लोगों को फर्ज है इसको सिर के दिल से इसकी कदर करें और इसकी बरकतों और इसकी जो है रहमतों से मुस्तफीद हूँ। लेकिन इस साथ साथ ये बात बताएगी आप जो बड़ी अल्लाह ताला ने इंसान की के ऊपर जो एहसान किया है, लेकिन जाहिर है एक नेमत दी है, तो नेमत हमेशा जो है अकाउंटेबिलिटी के साथ एहतसाब के साथ आती है। इसमें तहदीद और धमकी का पहलू भी है, और वो ये है कि ये किताब इलाही की आयात है, जो लोग इनकी कदर करने की बजाय इनका मजाक उड़ाएंगे और इनकी मुखालफत में अपना जोर सर्फ करेंगे, वो खुद सोच लें कि वो जो है वो किस शामत को जो है वो दावत दे रहे हैं, उनका अंजाम क्या होगा। इस अमर हक दीनी कुरान मजीद के मुखातबीन में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इसे नहीं मानते, बस जरूरी है कि उनके मुकाबले में इस कुरान मजीद की हकानियत को वाजे कर दिया जाए, और वो हकानियत और उसका इजहार फिर इस सूरत के अंदर बुरहान और दलाइल की सूरत के अंदर मौजूद है इंशाल्लाह, जो आज आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये दलाइल और बुरहान के हवाले से आप देखेंगे बड़ी पावरफुल सूरत है। हम आगे जो है वो हम अक्सर और बेशतर आप सुनते होंगे इमाम जो है इस सूरत में से जो है आयात तिलावत करते हैं, और इंशाल्लाह हम भी देखेंगे कि किस कदर पावरफुल जो है आयात है। कायनाती निशानियों में से तौहीद व आखरत का इस्तकलाल किया गया है। देखें ये दो आयात हैं, तीन आयात हैं जिनके अंदर जो है वो अल्लाह ताला की कायनाती निशानियों को बयान किया गया है, और फिर उससे जो है इस्तदलाल किया गया है। अगर उसकी यकीनी तौर पर इसकी तफसीर में जाएं तो शायद एक ही आयत की तफसीर के अंदर पूरा वक्त खत्म हो जाए, लेकिन मैंने उनको समराइज कर दिया है कि अल्लाह ताला ने अपनी इन आयत के अंदर अपनी तखलीक के बेशुमार कई एक शाहकारों का जिक्र किया है। मसलन अल्लाह ताला ने आसमानों का जिक्र किया है कि उसने सुतूनों के बगैर इनको जो है वो पैदा किया है, देख रहे कि पूरी कायनात जो है वो उसके अंदर कोई चीज नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कुरे हैं जो ऐसे ऐसे कुरे हैं जिनका हिसाब किताब जो है हमारे अहाते ख्याल में भी नहीं आ सकता। वो ऐसे कुरे जो है बड़े वो भी जो आप देख रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं और दूसरे टकराते नहीं हैं, और जो है अपने वजूद को बरकरार रखे हुए उन्होंने। अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात का हाकिम है और कायनात में हर चीज जो है उसकी इज्जत से हो रही है। अल्लाह ताला ने सूरज और चांद को एक खास जाब्ते के तहत गर्दिश दे रखा है और मुसखर कर रखा है, और उसमें बेशुमार जो हुकमत भी पोशीदा है। अल्लाह ताला कायनात के तमाम मामलात की तदबीर भी कर रहा है, वो बिल्कुल बैठ देंगे फारिग होके, बल्कि हर लहजा हर आन वो अपनी जो है वो इन उमूर की जो है तदबीर फरमा रहा है, और इससे फिर जितनी उसकी उसने अपनी मखलूक पैदा की है उनकी जरूरतें भी पूरी है। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर यानी आसमानों का पहले जिक्र किया, फिर जमीन की जो है वो चीजें बताई। जमीन में उसने वजी और अरीज जो है बड़े बहुत जमीन को बनाया, वसी और रीज बनाया फैलाया, और आप देखेंगे जमीन ऐसे फैली हुई है कि अगर आप एक कुरे को या एक बॉल या एक फुटबॉल की मिसाल ले लें तो फुटबॉल के ऊपर के हिस्से के ऊपर भी जो है समुंदर है, और देखेंगे नीचे किसी की तरफ भी समुंदर है, लेकिन वो कहीं पे खला में उनका पानी कहीं गिरता नहीं है, बल्कि वो जो होल्ड किया हुआ है। तो उसने इस तरीके से फैलाया, और जमीन में जो है उसने पहाड़ बुलंद किए और फिर उसके अंदर दरिया और नहरें जो है चला दी ताकि इंसानी जरूरत के लिए जो है वो सामान पानी का जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बंदोबस्त हो सके। अल्लाह ताला ने फिर फलदार मेवे पैदा किए जोड़ों की सूरत के अंदर, फिर अल्लाह ताला ने दिन रात का निजाम बदल रखा बाकायदगी इसके साथ जारी फरमा दिया। तो देखिए कि ये सारे का सारा निजाम हस्ती ना सिर्फ इस बात की शहादत दे रहा है कि इसको पैदा करना मखलूक में से किसी का काम नहीं है, इतने बड़ी बड़ी इस बड़ी कायनात को जो है ये जाहिर आज तक किसी ने क्लेम भी नहीं किया है और ना किसी के बस के अंदर है कि इसका कोई एक अदना सा हिस्सा भी जो है वो एक छोटा सा कोई सजारचा भी और जो है कोई मीटियोराइट भी छोटा सा जो है वो बना सके और उसको जो है हवाओं के अंदर जो है इस तरीके से कंट्रोल कर सके, तो फिजाओं के अंदर। तो ये बल्कि इस बात का भी शायद है कि ये जिस हस्ती ने बनाया है वो हमगीर इकतदार, उसका इकतदार इन सब चीजों के ऊपर जो है वो जारी और सारी है। वो इकतदार किसका है? वो खुदा वाहदहु ला शरीक का है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हकीकतों को आज पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची हकीकतें हैं, और कायनात में हर तरफ इन पर गवाही देने वाले जो है आसार भी मौजूद हैं। अगर लोग आंखें खोल कर देखें तो उन्हें नजर आ जाएगा कि कुरान में जिन जिन बातों पर ईमान लाने की दावत दी गई है, जमीन व आसमान में फैले हुए बेशुमार निशानात जो है ये निशानियां जो है आयात उसकी तस्दीक कर रही हैं। अब जो है अजरामे फलकी के साथ साथ जो है जमीन का जो 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 ताल्लुक है, यानी एक बरोफिकर की दावा दी गई इनके अंदर। तो जमीन के साथ सूरज और चांद का ताल्लुक, जमीन की बेशुमार मखलूक की जरूरतें जो है, पहाड़ों और दरियाओं का ताल्लुक, ये सारी चीजें इस बात की गवाही दे रही है कि इनको ना तो मुख्तलिफ अलग अलग खुदाओं ने बनाया है और ना मुख्तलिफ खुदा जो है वो इसका इंतजाम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे इतनी जबरदस्त किस्म की जो हाई लेवल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की कोऑर्डिनेशन और हम आंगी है कभी पैदा ना हो सके। अलग खुदाओं के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो सारे मिलकर एक बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड कायनात की तख्लीक करते, उसको मंसूबा बनाते, जिसके जिसके अंदर जरा बराबर भी कोई जो है कमी और खामी और कोई जो है एरर जो है मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इनको बनाने वाला एक खुदा वाहिद है। जमीन के ये अजीम शान जो कुरे जो है जो जमीन का अपना जो कुरा है बहुत बड़ा, और एक वसी खला के अंदर बहुत बड़ी ह्यूज मतलब खला इतनी वसी है कि अभी तक जो है जदीद बहुत ज्यादा साइंस के जदीद हो जाने और हम बिलियन ईयर्स ऑफ लाइट ईयर्स देखने के बावजूद इनटू द स्पेस देखने के बावजूद हमें इसका अंदाजा नहीं हो पा रहा ये कायनात कितनी बड़ी है। तो इतनी देखें इसका ये उसमें मुअल्लक होना फिरना जमीन का, और इतने बड़े फिर इसकी सतह पे पहाड़ों को बनाना और फिर दर्जाओं को जारी करना और फिर इसके अंदर जो तरह तरह की नेमतें इंसान के लिए जो उसने रखी हैं ताकि इंसान इनको मुस्तफीद हो सके और इंसान की जिंदगी इसमें जो है मुमकिन हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर जो है गवाह है, और ये आसार जो है ये गवाही पेश कर रहे हैं कि इनका इस कायनात का एक मुदब्बिर है, एक खालिक है, मालिक है और बड़ा हकीम है। हिकमत से ये बात बहुत बईद मालूम होती है कि वो इंसान को अक्लो शऊर और इख्तियार देकर और इरादे वाली मखलूक के तौर पे तो पैदा करे और अपनी जमीन की बेशुमार चीजों के ऊपर तसर्रुफ भी अता करे, और उसके बाद फिर जो है जिंदगी का और उससे इन चीजों का कोई हिसाब न ले। ये अल्लाह ताला की जो जो हिकमत है उससे कहीं गई बात है। और फिर इसके अंदर जो इस दुनिया के अंदर और उस जिंदगी के अंदर जो जुल्म करने वाले हैं उसे जालमों से बाजपोश न करे, मजलूमों की दादरसी न करे और नेक जिंदगी गुजारने वालों को उनका अजर न दे, बदकारों को सजा न दे, ये चीजें, और जो उसने अमानतें हमारे स्कूल की उन अमानतों का हिसाब न ले, ये अल्लाह ताला की हिकमत से कहीं जो है बईद है। और ये सारी के सारे अल्लाह ताला की जो है जो जो कुदरत है उसके सारे के सारे शवाहिद और तुम्हारे फिल आर्द फितून, और जमीन में कितात है, कितने जो है कितने जो है खत्ते के लिए ये कत्ते लफ्ज़ कितने है जो है कितातुन की जमा है, कितना उर्दू में इस्तेमाल होता है, कितना टुकड़ा खत्ता, यानी ये जमीन के खत्ते हैं। मुतजाविरातुन, मुतजाविरात जो है ये लफ्ज़ बज़ाहिर मुश्किल सा लफ्ज़ लग रहा है लेकिन इसके आप देखेंगे कि इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो ये उर्दू में भी इसका एक कनेक्शन मौजूद है और उसका मतलब होता है एक दूसरे से मिले हुए। आप सबसे पहले इसको जो है देखें इसका मादा क्या है लफ्ज का, इसका मादा जो है जीन वाव रा जो, ठीक है ये मादा है इसका। इससे फिर बाबे मुफाला थर्ड फॉर्म जो है तजावरा, ये तजावरो तजावरन तजावरन मिला हुआ होना, मिला हुआ एक दूसरे, ठीक है। तो ये इसका जो है, अच्छा उर्दू में फिर इससे जार लफ्ज निकला हुआ है, पड़ोसी जो घर जो हमारे घर के साथ जो घर है मिला हुआ जो नजदीक है वो जार पड़ोसी के मानो, जवार उर्दू में इस्तेमाल होता है कुर्बो जवार, और मुजावर उर्दू में इस्तेमाल होता है। आपको पता है मजारों के ऊपर जो बैठने वाले लोग होते हैं, मजारों के पास रहने वाले लोग होते हैं, हर वक्त मजार पे रहने वाले लोग होते हैं, पास रहते हैं जो है वो जो भी वहां पे जो है खबर होती है तो उसको उर्दू में मजावर कहा जाता है। तो मुतजाविर जो है ये वहां मिले हुए मुजक्कर है मुतजाविर, और मुतजाविरात जो है ये मुअन्नस है, उसकी जमा भी है मुअन्नस की। तो कितउन है यानी कितात है यानी कितने हैं बहुत सारे, इस वजह से उसकी जो सिफत आई है वो भी जमा की सूरत में आई है और जो है मुअन्नस की सूरत। वो जन्नात और बागात है, जन्नत बाग को कहते हैं आपको पता है, मीन आनाबिन, आनाब जो अनर इन बुन की जमा, इन बुन जो है, इन बुन जो है आपको पता है, अंगूर को कहते हैं इनब, सॉरी, या इनब बुन, इनब जो है अंगूर होता है उसकी जमा अनाब अंगूर, और वजर ऑन और खेती, जरात से जो हम कहते हैं, और खेतियां हैं वो नखील उन और नखील नखल नखला उर्दू में जो है खजूर के दरख्त के लिए इस्तेमाल होता है, वो नखील उन और जो है वो खजूर के दरख्त है, सिनवान व गैरु सिनवान इन, कुरान मजीद में दूसरी जगह पे ये इसका ये लफ्ज आया है, इसको जो है समझ लें। सिनवान उन कहते हैं ऐसा दरख्त जिसकी शाखें हूँ, यानी जिसको शाखदार, और शाखदार ये मतलब नहीं है उसकी टहनियां है, टहनियों से नहीं बल्कि जड़ों से जिसकी शाखें अलग हो जाए, निकल जाए, तो वो फिर जो है शाख जो सिनवान कहलाता है, और जो है फिर गैर सिनवान जिनकी जो शाखदार नहीं, यानी कुछ शाखदार खजूर के दरख्त है, कुछ जो है बगैर शाखों के। तो जैसे इस लफ्ज को नखील खजूर का दरख्त, या नखील का इतलाक उस खेती पर भी होता है और उस बाग पर भी होता है जिसमें खजूर के बहुत सारे दरख्त, खजूर के हवाले से उर्दू में नखला और नखील जो है ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। अलामा इकबाल ने अपनी असद खुतबा में लफ्ज इस्तेमाल किया नखील का। सिनवान एक जड़ से कई शाखें अगर निकली हूं तो शाखों वाले और शाखदार, यानी शाखदार उसका तर्जमा है फिर। और ये जो लफ्ज कहाँ से निकला, ये आपकी आप कह लें कि इजाफी मालूम के लिए, कुछ जो साथी यकीनी तौर पर कुरान पाक को ज्यादा आगे जाके जो पढ़ना चाहते हैं, तो ये जो है स्वाद नून वाव से निकला हुआ है, इसकी जो बाबे फारो की फोर्थ फॉर्म असना, इसका मतलब होता है दरख्त का जड़ से दो शाखें निकालना, ये वर्ब है अरबी, अरबी के हर मौके के लिए जो है वो एक लफ्ज है। तो अरबी अगर कोई दरख्त दो शाखें निकाल रहा है जड़ से, उसके लिए अरबी में एक लफ्ज मौजूद है। और सिनवुन किसी दरख्त की जड़ से फूटने वाली मुख्तलिफ शाखों में से हर एक शाख जो है वो सिनवुन है, ठीक है, तो उसकी जमा या उसका तस्निया दोनों जो है सिनवान। अब आपके लफ्ज ये समझ में आ गया होगा कि सिनवान उन कहाँ से निकला है, यानी अगर किसी दरख्त के में से जो आगे जो फूट रही है उसके जो तने फूट रहे हैं उनमें से अगर कोई एक जो है जो तना है एक शाख है, तो वो शाख उस वक्त कहते हैं, उस वक्त तो तना नहीं कहते, तना तो उस वक्त कहते हैं जब जो बड़ा मोटा हो जाए और बड़ा हो जाए, उस वक्त तो शाख ही है, हर एक जो है सिनमोन है, और उसका तस्निया और उसकी जमा दोनों सिनमान। जुस्का पिलाए जाते हैं बेमा इन पानी के साथ, ये बेमा वो नहीं है जो जिसका मतलब जो होता है, ये बाजर भी इसके मतलब है साथ है, इसलिए मुख्तलिफ रंग दिया है, और फिर है मा इन पानी वाहिदिन एक, इसको एक पानी पिलाया जाता है। अच्छा जुस्ता तो सका जस की शिकायतन पानी पिलाना, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पेश से शुरू हो रहा है, ये वर्ब, तो ये पैसे वाइज पिलाया जाता है बेमा इन पानी वाहिदिन एक, नहीं देखें कि वो उनको एक पानी पिलाया जाता है लेकिन दो शाखें निकल रही। वनुफद दे लो और जो है हम फजीलत देते हैं, हम फजीलत और हम फजीलत, नून पेश नून हम बाद को अदा बादिन बाद के ऊपर, और हम फजीलत देते हैं बाद को बाद के ऊपर, फजल तफजीलन, ये उर्दू का उर्दू में फजीलत तफजील इस्तेमाल। फिल उकुल ये अकल वाला है, लेकिन अकल का मतलब खाना होता है, तो ये उकल जो है जायका, ये भी जायका उस वक्त ही महसूस होता है जब इस कोई इंसान खाए, तो यानी उकल का मतलब फल भी होता है, प्रोड्यूस यानी जायका भी, खुराक भी, जिस जो भी चीज अगर जायके के अंदर उनका खाने का फल का खुराक का जायका मेंशन करता हूँ, जबकि उकल जो है लफ्ज इस्तेमाल। इन फी जालिका बेशक इसके अंदर, ला आया फिर वही लफ्ज आ गया है, निशानियां, देखिए बार बार निशानियों की बात हो रही है इसमें, यानी इस सूरत के अंदर बहुत ज्यादा जो है सूरत निशानी मौजूद है अल्लाह ताला की, तो उसने जिक्र किया है, इसलिए ये सूरत या शायद ये बात तज़किरा करने से जो है रह गई है कि ये बात जो है जो हजरत इमाम शाह वलीउल्लाह ने जैसे कहा कि ये अल्लाह ताला की निशानियों के हवाले से इसमें जो है वो तस्कीर मौजूद है, तस्कीर बे आला इल्ला। तो देखें कि एक जो है कुरान मजीद में तस्कीर बे अज्जा मिल्ला है, उन दिनों का जिक्र है जब कौमों को जो है वो बर्बाद तबाह किया गया, जैसे सूरह हूद के अंदर बहुत ज्यादा जिक्र है, सूरह अनाम के अंदर है, सूरह आराफ के अंदर है, उनमें जो है अल्लाह ताला की उन निशानी, इसमें जो है तस्कीर बे आला इल्ला अल्लाह ताला की निशानी, अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है, उस हवाले से तस्कीर है। लिकौमी या जाकिलू, उसमें निशानियां बहुत सारी, किन लोगों के लिए, जो अकल रखने वाले काम से, और पिछली वहां पे आया था लिकौमी, ये तफक्करून, जो लोग गौर फिक्र करके देख लें कि स्लूक को बदला गया है। व इन ताजब, और अगर आप तजुब करें, व इन ताजब अगर आप तजुब करें, फ अजब औलोह, तो काबिल तजुब है तो, ये कौन इन, ये ताजब जो है अजब से हुई, आप देखें उर्दू से हुई लफ्ज उर्दू का, तो अजब उन तो ताजुब करें इनकी। इसकी आ क्या इजा, जब कुन्ना तुराबा, हम हो जाएंगे तुराब, मिट्टी जो है तुराब, तुराब उर्दू में इस्तेमाल होता है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो है उनकी कुनियत है अबू तुराब, मिट्टी के बाप, ये कुनियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही उनको जो है इशारत फरमाई, तो फिर उनका नाम जो है इसी तरह अबू तुराब। इन्ना बेशक, तो इन जरूर, डेफिनेटली, लफी खल्किन जदीद, इन्ना क्या हम, लफी यकीनी तौर पर, डेफिनेटली, खल्किन जदीद, नई खल के तौर पर, जदीद खल की सूरत में जरूर पैदा किए जाएंगे, असरे लो दोबारा नए, तो उलाइका यही वो लोग हैं, उलाइका लजीन यही वो लोग हैं, कफरू जिन्होंने कुफर किया, बेरबे अपने रब से, व उलाइका अखलाक, और यही वो लोग हैं के उलाइका अखलाल, जिनके अखलाल हैं, जिनके जो है तौक हैं, जो गर्दन में डाला जाता है, जो किसी को पाबंद करने के लिए जो है, अगलाल गुल्लन की जमा है, हथकड़ियां या तौक, जिस इंसान जो है किसी को पाबंद करते, उसकी उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन जो है महदूद करते। फी आना के हिम, वही आ गया, आनाक उनक की जमा, उनक को हम पहले पढ़े हैं, गर्दन, इन्हीं आनाक जो है उनक की जमा है, गर्दने, इनकी गर्दनों में तौक पड़े हैं, उलाइका, और यही वो लोग हैं, साबुन्ना आग वाले हैं, हूँ फीहा खालिदून, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। साथ ही इन दो आयात
और देखो, जमीन में अलग अलग खिते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुतसिल वाके हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें से कुछ इकरे हैं और कुछ दोरे, सबको एक ही पानी सैराब करता है, मगर मजे में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीजों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। अब अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल लोगों का ये कौल है कि जब हम मर कर मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा किए जाएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया है, ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, यही जहन्नम ही है और जहन्नम में हमेशा रहेंगे।
जज़ाकअल्लाह। अब देखिए, कायनाती निशानियों के एक और पहलू की तरफ इशारा किया, और वो इशारा जो है वो आप देखिए कि सात निशानियां हमने पहले पढ़ी है। आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला ने जमीन को कितनी आदि तकसीम किया, उसमें खेत उगाए, बागात लगाए, मादनियात और चीजें, मुफीद चीजें रखी, अल्लाह ताला ने उनमें जो है अंगूर खजूर जो है पैदा किए, फिर जो है उसमें मुख्तलिफ जायके रखे, ये सारी चीजें बताइए। तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो बायोडायवर्सिटी भी है, और मुख्तलिफ दूसरी जो तनवो है, जो कायनात जमीन के अंदर, कायनात के अंदर जमीन की तनवो का जिक्र किया गया, कि अल्लाह ताला ने जमीन को यकसानी पैदा की, मुख्तलिफ खित्ते पैदा किए, मुख्तलिफ खित्तों की मुख्तलिफ जो है किस्म की खसूसियात है, किसी में कुछ ज्यादा पैदा होता है, किसी में कुछ पैदा होता है, किसी की कोई खास खासियत है, कुवत है, सलाहियत है, पैदावार किसी की मुख्तलिफ है, किसी में मादनी खजाने ज्यादा है। तो देखिए, ये सारी की सारी जो इख्तलाफात और तनवो और डाइवर्सिटी अल्लाह ताला ने रखी है, इसके अंदर अपनी बेशुमार हिकमतें और मसलतें हैं कि इंसान उनको जो है शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कायनात में भी इसी तरह यकसानी नहीं रखी है, एक ही जमीन है मगर उसके जो है वो खत्ते और अलग हैं, पानी अलग है, जमीन अलग है, गले अलग हैं, और फिर आप देखें कि प्रोड्यूस अलग है। तो अगर कोई शख्स गौर करेगा इन बातों के ऊपर, तो यानी कि ये अल्लाह ताला ने किस तरीके से कायनात के अंदर, जमीन के अंदर डाइवर्सिटी और तनवो पैदा किया है, तो फिर वो परेशान नहीं होगा कि इंसानी तबीयतें और मेलानात और इंसानी मिजाज में इतना खिलाफ क्यों पाया जाता है। यानी आप लोग कहते हैं कि देखें एक ही इंसान है लेकिन कितने मुख्तलिफ मिजाज है, वाकई मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। तो देखें ये डाइवर्सिटी अल्लाह ताला की कुदरत और निशानियों में से एक है, और आगे चलकर इसी सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सब इंसानों को यकसां पैदा करते, एक जैसी बिल्कुल जो है वो उसको सारी सारी जो है एक जैसी खसूसियात होती है। लेकिन देखें उससे फिर कितनी जिंदगी जो है वो फीकी होती है, एक ही जैसे शख्स होता और सब एक जैसे बिहेव करते, तो फिर उसके अंदर जो है रंग रंगी जो है ना वो जो है वो ना होता, जिंदगी की ये जो है खूबसूरती ना होती, ये सारा सब कुछ यकसां बना देने से तो ये सारा हंगामा वजूद जो है बेमानी होकर रह जाता। तो ताज्जुब के काबिल जो बात बताई गई है, ये कहते हैं कि क्या हम मरने के बाद, घर सर जाने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे? तो जिस अल्लाह ताला ने पहली मरतबा कायनात को और कायनात की हर चीज को पैदा किया है, तो तज्जुब तो काबिल तो ये बात है, लेकिन इस बात पे जो है तज्जुब करना कि क्या वो दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा, ये बात खुद बड़ी मजे करके है जो काबिल तज्जुब है कि अल्लाह ताला देखें ये कायनात को किस तरह बनाया है, अभी उसने इन आयात के अंदर बताया है। और फिर ये इनकार करना अल्लाह ताला का, यानी कि वो ये ताजुब करना, तो अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी हिकमत और उसके अला कुल्लिशय कदीर होने के ऊपर जो उसका इनकार है। और इससे इनकार के सबब यहाँ बताया गया, और वो ये है कि गर्दनों में तौक है। अच्छा ये जो है ये जबर मिसल है, ये गर्दनों में तौक नहीं है क्योंकि बाकी गले में जो तौक डले हुए हैं, चेन है जो नजर आ रहा है, ये जबर मिसल है कि तौक जो है एक अलामत है कैदी होने की, और जो है वो यानी कि कोई किसी को पाबंद कर दिया गया है, कोई उसकी मूवमेंट को आगे नहीं मूव कर सकता। तो जब इसका जिक्र जो है इन निशानियों के हवाले से किया गया तो इसका मतलब है कि उनकी गर्दनों के अंदर जहालत के, किब्र व अना के, हठधर्मी के, ख्वाहिशात नफ्स के, अबाव अजदाद के, अंधी तकलीद के और जबूत के तौक पड़े हुए हैं। और कुरान मजीद ने इसको दूसरी जगह सूरह यासीन में बयान फरमाया है, इन्ना जअलना फी अनाकिहिम अगलालन बहूर, अल्लाह ताला ने खुद उनको जो है उनकी गर्दनों के अंदर तौक डाल दिए हैं। और जाहिर है अल्लाह ताला ने आर्बिट्रेरली नहीं डाले, अपनी तरफ से फैसला करके नहीं डाला कि ऐसा फैसला करके नहीं डाला कि इसको तौक मिलेगा और इसको नहीं मिलेगा, बल्कि ये अल्लाह ताला खुद इंसान ने खुद अपनी जो अकल है और अख्तियार है उसको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला को पहचानने से, अल्लाह ताला को मानने से इनकार कर फिर ये तौक जो है उसको वो मुस्तहक हुआ है। तो ये तो उन्हें अल्लाह ताला की कुदरतों को देखने का मौका जो है नहीं देते ताकि उन पर गौर कर सके। तो जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ताला की नेमतों की ना कदरी की, उसको मानकर नहीं दिया, तो ये लोग नेमतों के कुफरान, हक नासी, किब्र गरूर और इस ना कदरी के बाद जहन्नम में रहेंगे, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। तो मैं यस्ताजिलून का ये इस अजला से है, इस्तेजाल जो है इस्तेजाल बाब इस्तफाल है, किसी चीज को तलब करना, वो जल्दी तलब करते हैं यानी जल्दी चाहते हैं आपसे, इससे ये आप जो है बुराई को कबल हसना, बुरा भलाई से पहले, यानी इंसान की अजीब बात है, देखिए इंसान जो है बुराई को बुराई चाहता है भलाई से पहले, ये बात बताई गई। कद खलत हालांकि, और उपाव जो है हालिया है, हालांकि कद खलत हकीकत ये है कि कद खलत ये गुजर चुकी है, मिन कबल में से पहले गुजर चुकी है जो है ये खला यखलू खलोवन गुजरना जो है वक्त का, या खाली होना भी होता है, इसी से लफ्ज खला भी है, तो इससे खलबत भी है, तो गुजर चुकी है इससे पहले मुफलात जो है वो मुफलात जो है ये वही लफ्ज है जो उर्दू में है मुफला कहते हैं, लाश का मुफला करना, तो क्या मतलब है लाश के आजा काटना जो है, आपको पता है ये जैसे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला की लाश का मसला हुआ कि वही लफ मुफला है, तो मुफला ता जो है ताए 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 तानीस है, जो है जमा भी लाया गया यहाँ पे। तो ये मुफलातुन की जमा है मुफलात, लाश के अज़ा काटना। तो फिर इसके मतलब तो सजा को दूसरों के लिए इबरत बनाना या मिसाल बनाना, ठीक है। अच्छा, मुफलात जो ऐसी सजाएं जो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। तो गुजर चुकी हैं, तीन तर्जमा, गुजर चुकी हैं उनसे पहले इबरतनाक सजाएं, यानी अल्लाह ताला ने वो कौम है जिनको इबरतनाक सजाएं दी, ये बात कहने से बात बात यह है। वह इन्ना, और बेशक रब्बा का आपके रब, लजू यकीनी तौर पर वाला, मगफिरतन मगफिरत वाला, लजू मगफिरतिन मगफिरत वाला, यकीनी तौर पर आपका रब बख्शने वाला माफ करने वाला है। से लोगों के लिए अला जुल्म है उनके जुल्म के बावजूद, इन रब्बा का और बेशक रब्बा रब शदीदुल इक़ाब यकीन सख्त सजा देने वाला भी है। यकूलुल्लज़ीन, और वो लोग कहते हैं कफरू जिन्होंने कुफर किया, लौला उन्ज़िला क्यों ना उतारी गई, अलैहि इस पर आयत कोई आयत निशानी, रब्बी उसके रब की तरफ से, इन इतनी लाखों करोड़ निशानियों के बावजूद कहते हैं इसके रब की कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, आप को तसली दी गई। इन्नमा आप नहीं है मगर, बस हकीकत ये है कि आप तो बस ये हैं, अंता आप ये हैं, मुनजरुन आप मुनजर, आप जो है बर्दार करने वाले, अंजरा जुनजरो इंजारन इससे फिर जो है मुनजर बर्दार करने वाला फायल। वलिकुल्ले हा वलिकुल्ले कौमिन, और हर कौम के लिए हादिन, हादिन हर कौम के लिए एक हिदायत देने वाला है, हादी है जो है रास्ता दिखाने वाला है, ये हिदायत उनसे हदायादी हिदायतन से इसम फाइल जो है हादिन, बिल्कुल ऐसे जैसे कादी होता है, हादिन जो है ये हादिन वैसे ही उसी किस्म के नया तर्जुमा पड़ता है।
ये लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि इनसे पहले जो लोग इस रविश पर चले हैं उन पर खुदा के अजाब की इबरतनाक मिसालें गुजर चुकी हैं। हकीकत ये है कि तेरा रब लोगों की ज्यादतियों के बावजूद उनके साथ चश्मपोशी से काम लेता है, और ये भी हकीकत है कि तेरा रब सख्त सजा देने वाला है। ये लोग जिन्होंने तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दिया है, कहते हैं कि इस शख्स पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतरी। तुम तो
बिल्कुल
महा खबरदार कर देने वाले हो और हर कौम के लिए एक रहनुमा है।
देखिए वही बात बताई कि इंसान मजमू अजदाद है, मुख्तलिफ जिदे हैं इंसान, इंसान की दो अजीब फिसलते हैं, खैर के रास्ते पे चले तो फिर जो है फरिश्ते भी उस पर राश करते हैं, और वसत कुनैन जो है और जमीन व आसमान की वसत है उसके सामने सिमट जाती है, और अगर शर पे आ जाए और नाफरमानी के रास्ते में आ जाए फिर कहा हमारी जबान में कहा जाता है कि उसे शैतान भी जो है पनाह मांगता है। जो जो है वो गालिबन जिगर बुरा आबादी ने कहा था कि घटे अगर तो बस एक मुश्ते खाक है इंसान, बढ़े तो वसत कौनैन में समा न सके, ये इंसान की जो हकीकत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का को देखें कि मुसलसल दावत दे रहे हैं और खूब तरह तरह हर असलूब से बता रहे हैं, ये सारी निशानियां बताई गई हैं अल्लाह ताला के वो जो है तक पहुंचने के लिए और मानने के लिए, और नबी सल्लम ने उनको बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने जो है भेजा है तुम्हारी तरफ शरीयत देकर एक निज़ाम देकर, तुम अपनी इर्शादी इज्तिमाई जिंदगी उसके मुताबिक गुजारोगे फिर जो है अल्लाह ताला तुम्हें जो है ये और ये अता करेगा, और अगर इसके खिलाफ चलोगे नाफरमानियां करोगे नहीं मानोगे तो फिर उसका गजब अजाब की सूरत के अंदर तुम पर आएगा। तो इस पर बड़ी झिटाई के साथ कहते हैं कि तुम वाकई नबी हो और देख रहे हो कि हम तुम झुटला दिया है, तो अब ले आओ फिर वो अजाब, तो क्यों नहीं आता हम पर वो अजाब। तो इस इन बातों के जवाब दिया गया कि ये नादान है, खैर से पहले ही शर मांगते हैं, अल्लाह ताला की तरह अल्लाह ताला उनको संभलने की जो मोहलत दे रहा है उससे ये फायदा उठाने की बजाय जो है वो बाकियाना रविश कर रहे हैं, और इससे पहले फिर देख लेंगे कितनी कौमें गुजर चुकी है जिन्होंने अपने पैगम्बरों की तकजीब की है। तुम खुद अपने तजारती सफरों में कौम आद और कौम समूद और मदियन और कौम लूत के खंडरात देखते हो तुम, और फिर इसके बावजूद भी जो है अल्लाह ताला के साथ जो है वो बगावत और सरकशी करते हो और मान के नहीं दे रहे हो और मजाक उड़ाते हो, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि वो उनकी सरकशी और नाफरमानी के बावजूद उन्हें ढील दिया जा रहा है, और उन्हें फिर जो है वो अल्लाह ताला ने कहा फरमाया कि अगर अल्लाह ताला जो है वो तुम नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें भी जो है वो इबरत के तौर पे जो है इबरत बना दिया जाएगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है, मुशरिकीन के मुतालबे के जवाब दिया गया इसका कि तमाम लोगों को मुतमइन करना आपका काम नहीं है, आप तो बस खबरदार करने वाले हैं, मुनजिर हैं, नजीर हैं आप। जो आपकी जिम्मेदारी है ये आपकी जिम्मेदारी है, नजीर होना, खबरदार कर देना। ये खिदमत अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जमाने में हर कौम में एक ना एक हादी मुकर्रर करके लिए है, और अब ये जिम्मेदारी जो है आप अदा कर रहे हैं। इसके बाद जिसका जी चाहे आंखें खोले और जिसका जी चाहे गफलत में पड़ा रहे, यानी नबी अकरम को तसली शफी है। और फिर यानी गोया ये बता दिया गया है कि तुम किसी अंधेर नगरी में नहीं रह रहे हो जहाँ किसी चौपट राजा का राज हो और बाजपोस नहीं होगी, बल्कि यकीनी तौर पर तुम्हारी जो है इस जिंदगी के मुतल मानने न मानने के मुतल तुम्हारे अमाल की यकीन बाजपोस होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ऊपर अल्लाह ताला सही मानों के अंदर जो है वो ईमान लाने, आखिरत के ऊपर और जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और आपके निजदाई निज़ाम के ऊपर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें उसके मुताबिक ही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।